रेहान ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना ही हैरानी से सवाल किया तो शान ने उसको घूर कर देखा, पर रेहान के दिमाग में तो कुछ और ही बवाल मचा हुआ था। वो गहराई से शान की कही बातों के बारे में सोचने लगा। फिर उसे आरवी याद आई और सब तारों को जोड़ते ही उसके सामने जो आया उसे सोचकर ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने शान को आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हुए हैरानी से कहा, तेरी शादी हो गई, इसीलिए तू दो दिन से गायब था? वो लड़की, मतलब वो लड़की नहीं, तेरी पत्नी है, तभी उसका सामान तेरे कमरे में था। वो लग भी मैरिड रही थी और मैंने उसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा था, मतलब वो तेरी पत्नी और मेरी भाभी है। शान उसकी सुनकर गुस्से से गरजा, ना तो वो मेरी पत्नी है और ना ही तेरी भाभी, इसलिए मुंह बंद रख और जा यहाँ से, वरना सारा गुस्सा तुझ पर ही निकाल दूंगा। रेहान उसको हैरानी से देखने लगा। शान बहुत गुस्से में लग रहा था। अब रेहान ने एकदम गंभीर होकर कहा, क्या ये शादी तेरी मर्जी के खिलाफ हुई है? उसके सवाल को सुनकर अब शान ने उसे कुछ असमंजस में देखा तो रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बचपन से तेरे साथ हूँ, तू जो कहता है वो भी समझ जाता हूँ और जो नहीं कह पाता उसे भी समझ लेता हूँ। शादी के नाम से भी तुझे नफरत है, पर तेरी शादी हो गई मतलब साफ है कि शादी तेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। पर जब तुझे शादी करनी ही नहीं थी, इस रिश्ते पर तुझे विश्वास ही नहीं है, तो तूने बेकार में भाभी। उसके इतना कहते ही शान ने उसे गुस्से से घूरा तो रेहान ने अपनी गलती को सुधारते हुए आगे कहा, मतलब उस लड़की को इस रिश्ते में क्यों बांध लिया? भले ही तू इस शादी को ना मानता हो, पर वो तो मानती होंगी ना, तो ये तो उनके साथ नाइंसाफी हुई। कोई नाइंसाफी नहीं हुई है उसके साथ, एक फटीचर से शादी होने वाली थी पर ऐन वक्त पर लड़के ने उसकी इज्जत का सबके सामने तमाशा बना दिया और रिश्ता टूट गया। मुझे तो लगता है जरूर लड़की ने ही कुछ किया होगा। खैर मुझे उससे क्या, उसकी शादी टूट गई और वो बड़ी माँ के दोस्त की बेटी है, इसलिए बड़ी माँ ने उसकी इज्जत बचाने के लिए मुझसे उसकी शादी करवा दी। बात उनके प्रॉमिस की थी, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती की शादी को करना पड़ा, पर मैंने भी साफ कह दिया था कि वो उनकी बहू बनकर रहेगी, मेरी पत्नी नहीं। उसके लिए ना मेरी जिंदगी में कोई जगह है और ना ही मेरे दिल में उसके लिए कभी कुछ होगा। शान ने अब उसे शॉर्ट में सब बता दिया तो रेहान मन ही मन बोला, जो तूने कहा वो आधा सच है, जिसे तूने अपने नज़रिए से देखा है। तेरी नज़रों में अब लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं है, इसलिए तूने ये सब कहा, पर भाभी मुझे ऐसी नहीं लगती, कुछ और ही बात है। मुझे पता करना ही होगा कि आखिर इन दो दिनों में हुआ क्या है। तू अपनी नफरत के चक्कर में भाभी के साथ अन्याय करने जा रहा है। अगर भाभी सही है और मुझे लगा कि वो तेरे दिल से नफरत मिटाकर तुझे फिर से प्यार करना सिखा सकती है, तो मैं इसमें उनका साथ जरूर दूंगा। मैं तुझे तेरी जिंदगी बदले की आग में जलाकर भस्म करने नहीं दे सकता। हाँ, तू अपनी जगह सही है, इसलिए मैं आज भी तेरे साथ हूँ, पर अपने बदले के चक्कर में तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, ये मैं होने नहीं दे सकता। तेरी जिंदगी को भी ठहराव की जरूरत है, किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो तेरे दिल में फिर से प्यार जगा सके, तुझे अपनी बसाई दुनिया से बाहर निकालकर फिर से जीना सिखा सके। कब तक भटकता रहेगा, कहीं तो तुझे भी ठहरकर आराम करने की जरूरत महसूस होगी, जरूरत होगी किसी ऐसे इंसान की जो तेरी बेचैनी को मिटाकर तुझे सुकून के कुछ पल दे सके, तेरे अंदर जलते इस आग को जो अपने प्यार की बारिश से बुझा सके, ताकि तू इससे आगे बढ़े। अगर भाभी ही वो इंसान है तो मैं उनका साथ दूंगा। तू भले ही उन्हें अपनी पत्नी ना मानता हो, पर वो तेरी पत्नी है और मेरी भाभी भी, इसलिए मैं तेरे खिलाफ जाकर भी उनका साथ दूंगा। जहां शान आरवी को लेकर गुस्से और नफरत से भरा हुआ था, वहीं रेहान को अब उसके अंदर एक उम्मीद नजर आ रही थी कि शायद उसके जरिए वो शान को फिर से खुलकर जीते देख सके। आरवी अपना बैग लेकर रूम में पहुंची और उसे खोलकर कपड़े ढूंढने लगी। ठीक इसी वक्त अर्पिता जी वहां आ गईं। उन्होंने उसको कपड़ों को उलटते पलटते उनके बीच उलझे देखा तो उसके पास आ गईं और मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, आज पहनने के लिए कपड़े ढूंढ रही है? आवाज़ सुनकर पहले तो आरवी चौंक गई, फिर उसने खुद को संभाला और उनकी तरफ मुड़कर हल्की मुस्कान के साथ बोली, गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा शोपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, हम यहाँ आपको ये देने आए थे। आरवी ने सवालिया नजरों से शोपर को देखते हुए सवाल किया, ये क्या है बड़ी माँ? ये हमारे तरफ से हमारी बहू के लिए छोटा सा तोहफा है, आपकी मुँह दिखाई का। हम आपको बहू बनाकर ले तो आए पर कोई रस्म कर ही नहीं पाए, क्योंकि शान नहीं मानते, पर कुछ रस्में उनके बिना भी हो सकती हैं, तो बस उन्हीं रस्मों को पूरा करना है। हमने आपको मुंह दिखाई पर कुछ नहीं दिया था, इसलिए ये हमारी तरफ से है। आज आपको यही पहनना है और बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजना है। जल्दी से तैयार होकर नीचे आइएगा, पहले आपके हाथों पूजा करवानी है, फिर आपकी पहली रसोई की रस्म होगी जिसमें आपको सबके लिए खाना बनाना होगा, तो जल्दी नीचे आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। उन्होंने अपनी बात पूरी की। आरवी ने मुस्कुराकर हामी भरी, फिर उनके हाथों से शोपर लेकर उसको बेड पर रख दिया और उनकी हथेली को अपनी हथेली में थामते हुए बोलना शुरू किया, बड़ी माँ आपने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए मेरे साथ जो हुआ या हो रहा है उसके लिए खुद को दोष मत दीजिए। आपने मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है, बल्कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। भले ही उन्होंने मेरे लिए नहीं, पर आपके कहने पर ही सही, पहले उन्होंने मेरी इज्जत को लुटने से बचाया, फिर सारे समाज के सामने मेरा हाथ थाम कर मुझे अपनी पत्नी होने का सम्मान दिया। अगर वो वक्त पर नहीं आते तो मैं बर्बाद हो गई होती। अगर उन्होंने उस वक्त मेरा हाथ नहीं थामा होता तो मुझे और माँ को लोगों के जाने कितने ही तानों को सुनना पड़ता। कैसे सह पाती माँ मेरे चरित्र पर उठते सवालों को। उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे लोगों की नजरों में सम्मान दिलाया है, मेरी माँ को जिंदगी दी है। अब वो निश्चिंत है कि उनकी बेटी की एक अच्छे घर में शादी हो गई है। भले ही वो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, पर उनकी वजह से मुझे अंशिका की माँ कहलाने का सौभाग्य मिला है। आपके रूप में एक माँ और डैड और बड़े पापा के रूप में दो दो पिता मिले हैं, जबकि मेरे सर से तो पिता का साया बहुत पहले ही छिन गया था। ना चाहते हुए भी उन्होंने मेरी जिंदगी को एक दिशा दी है, मुझे जीने की वजह दी है, इज्जत से सर उठाकर चल सकूं इस लायक बनाया है मुझे। इतने सारे खूबसूरत रिश्तों को मेरे आंचल में डाल दिया, उनके तो बहुत एहसान है मुझ पर, जिन्हें मैं शायद कभी उतार नहीं सकूंगी। आपके बेटे गंदे इंसान नहीं है, इतना तो मैं समझ गई हूँ। वो एक बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे पिता है। पति कैसे बनेंगे मुझे नहीं पता। वो कभी मुझे अपनी पत्नी मानेंगे भी या नहीं ये भी नहीं जानती, पर फिर भी मुझे उनसे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने मुझे नई जिंदगी दी है और उन्होंने मेरी दिशाहीन जिंदगी को एक नई दिशा दे दी है। मुझे इस घर में रहने का हक दे दिया है, जिससे मेरी माँ भी अब मेरे तरफ से निश्चिंत होकर रह सकती है। आपने और उन्होंने मुझसे कुछ छीना नहीं है, बल्कि बहुत कुछ दिया है। और रही उन रस्मों की जो नहीं हो सकी, तो सबसे बड़ी रस्म तो उन्होंने विवाह के साथ फेरों को पूरा करके मेरी मांग में सिंदूर सजाकर और मेरे गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाकर पूरी कर ही दी है। फिर क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ छोटी मोटी रस्में नहीं हो पाई तो।
मैं खुश हूँ बड़ी माँ, इसलिए आप भी ये सब सोचकर उदास मत होइए। उसकी समझदारी भरी बातें सुनकर अर्पिता जी मुस्कुरा उठी। उन्होंने प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहा, आपकी यही समझदारी हमें ये विश्वास दिलाती है कि आप शान को संभाल लेंगी, उन्हें सुधार देंगी और फिर से जीना सिखा देंगी। चलिए अब बातें बात में करेंगे, पहले आप तैयार होकर नीचे आ जाइए, उन्होंने बड़े प्यार से कहा। तो आरवी ने हाँ में सर हिला दिया। वो मुस्कुराकर वहां से चली गई तो आरवी खुद से ही बोली, पता नहीं मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी भी या नहीं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर मैं कैसे उनकी तरफ कदम बढ़ा पाऊंगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। वो खुद में ही उलझ गई, फिर शान के ख्याल को परे झटका और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर में तैयार होकर नीचे पहुंची, अर्पिता जी उसे देखकर मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने उससे पूजा करवाई, जिसमें वो सुभाष जी और सुयश जी के साथ साथ छाया और सब नौकर भी शामिल थे। शान को भी बुलाया था, पर वो रेहान के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहा था तो नहीं गया। वैसे भी उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पूजा के बाद आरवी ने सबको प्रसाद दिया, फिर किचन में चली गई। छाया उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चली गई, पर आरवी ने उसे सब पूछ लिया कि क्या कहाँ रखा हुआ है, और फिर उसे अंशिका के पास भेज दिया। खुद अपने साड़ी के पल्लू को कमर पर खोंसकर काम में लग गई। कुछ आधे घंटे बाद जब वो पूड़ियाँ तल रही थी, तभी रेहान ने वहाँ कदम रखा। कदमों की आहट पाकर आरवी ने पलटकर पीछे देखा तो रेहान पर नज़र पड़ते ही उसने वापस अपनी नज़रें घुमा ली और काम में लग गई। रेहान ने फ्रिज से बोतल निकाल ली, फिर स्लैब पर ग्लास रखते हुए उसमें पानी डालने लगा, पर नज़रें उसकी आरवी के चेहरे के भावों पर जमी थी, जबकि आरवी अपना पूरा ध्यान काम में लगाए हुए थी।